खुदावा आप हम तेरे शुक्रगुजार हैं आज की सुबह के लिए कि हम जिंदा हैं, तेरे शुक्रगुजार हैं कि तेरा नाम इज्जत वाला है, मोहतबर है, पाक है। तो खुदावन हमें तेरे नाम की, तेरी ज़ात की और खुदावन खुदा तेरे इख्तियार की तुझे बाप जानते हुए इज्जत करना सिखा। आज हम जो कुछ भी सीखें हम सब के लिए बरकत का, रहनुमाई का और खुदावन खुदा तसल्ली का और तेरे मसीही रास्ते पर चलने का हम सबको शर्फ बख्श। यीशु मसीह के नाम में ये दुआ मांगते हैं, आमीन। कल रात बहुत ही अजीब और मौजूदाना रात थी जब हम सब दुआ के लिए इकट्ठे थे, खुदा का कलाम पढ़ रहे थे, तो बच्चों से और नौजवानों से एक सवाल पूछा कि अगर आज इस वक्त 5 मिनट में आप मर जाएं, तो आप कहां पर जाओगे। बहुत से बच्चों को पता ही नहीं था कि वो कहां पर जाएंगे। बहुत से नौजवानों ने कहा कि हम दोजख में जाएंगे क्योंकि बहुत ज्यादा गुनाह किए हैं, और किसी नौजवान ने कहा कि मैं यीशु मसीह के पास जाऊंगा। तो सारी बातचीत के दौरान जब उनसे सवाल पूछा गया तो जो नतीजा निकला, उनमें से 10 के 10 नौजवानों ने यीशु मसीह को शख्सी तौर पर कबूल नहीं किया था। तो आपकी तवज्जो में ये बात लाना चाहता हूं कि कल रात 10 नौजवानों ने यीशु मसीह को कबूल किया और मसीह के खानदान में शामिल हो गए, और ये बहुत बड़ी खुशी की बात है क्योंकि लिखा हुआ है खुदा के कलाम में कि जब कोई एक गुनाहगार तौबा करता है तो आसमान पर उसके लिए बहुत बड़ी खुशी होती है। तो ये बहुत ही खुशी की बात है कि क्योंकि कोई इस करोड़ों की दुनिया में आज कल की रात 10 उस दोजख की आग से, जो आग ऐसी है जो बुझने की नहीं, दोजख ऐसी जगह है जहां पर रोना और दांतों का पीसना है, ऐसी खौफनाक, ऐसी आहों और नालों से और मातम से भरी हुई जगह, जहां पर का कीड़ा नहीं मरता, जहां पर दर्द नहीं खत्म होता, जहां पर लगी हुई आग कभी भी नहीं बुझती। तो उस आग से, उस खौफनाक जगह से, और सबसे भड़कर वो जगह जो खुदा की हजूरी से अलहदा है, जिसमें खुदा की मोहब्बत और कोई चीज भी नजर नहीं आती सिवाय अंधेरे के, तारीकी के, अलहदगी के, रोने और धोने और अफसोस और जिंदगी भर, उम्र भर, पूरी हयाती रोना ही और रोना है। तो खुदा उनका शुक्र है कि उन 10 नौजवानों ने नए सिरे से पैदा होने का तजर्बा हासिल किया, और पालूस रसूल की यही खिदमत थी। यीशु मसीह ने अपने शिगिर्दों को यही हुक्म दिया था कि जाओ और सब कौमों को अंजील की बशारत, अंजील की खुशखबरी दो सब कौमों को। तो पालूस रसूल उसी सबब से कैद खाना में था और उसने ये खत लिखा इफिसियों 3:5 में। पहली आयत में यूं लिखा है, पालूस कहता है, इसी सबब से मैं पालूस, जो तुम गैर कौम वालों की खातर मसीह यीशु का कैदी हूं। शायद तुमने खुदा के उस फजल के इंतजाम का हाल सुना होगा जो तुम्हारे लिए मुझ पर हुआ, यानी ये कि वो भेद मुझे मुकाशफा से मालूम हुआ, चुनाचे मैंने पहले उसका मुख्तसर हाल लिखा, जिसे पढ़कर तुम मालूम कर सकते हो कि मैं मसीह का वो भेद किस कदर समझता हूं। और फिर आगे वो चलते हुए सारी बात को मुकम्मल करता है। पालूस रसूल खुशखबरी का पैगाम देने के बायस कैदखाना में था। पालूस रसूल ने खुशखबरी के पैगाम की जो जिम्मेदारी खुदावंद यीशु मसीह ने जिस दिन उसे पकड़ा, जिस दिन उसे बुलाया, जिस दिन उसकी आंखें खुल गई, जिस दिन वो गुनाह और खुदपरस्ती की तरीकी से निकलकर मसीह का बंदा बना। उसने मसीह के उस पैगाम को लिया और कहा कि मैं जाऊंगा। इसलिए पालूस की जिंदगी से हम देखते हैं कि वो मजहबी रहनुमा था, वो शरीयत और इल्म की तमाम बातों से वाकिफ था, वो सब कुछ जानता था, लेकिन उसकी जिंदगी में एक कमी थी। वो क्या थी? मसीह को कबूल करना या नए सिरे से पैदा होना। जिस दिन उसने यीशु मसीह को कबूल किया, उसकी नई पैदाइश हुई, इसीलिए उसे नया नाम मिला और उसका नया नाम पालूस था। इसलिए यीशु मसीह की ये तालीम है कि हम सब में से हर एक को नए सिरे से पैदा होने की जरूरत है, क्योंकि हमारी जिंदगी याकूब के खत के मुताबिक लिखा है कि हमारी जिंदगी आबी बुखारात का सहाल है। आबी बुखारात किसे कहते हैं? जब आसमान से क्या पड़ती है? ओस पड़ती है, या धुंध पड़ती है, या जब हम पानी उबालते हैं तो उसमें से भाप उड़ती है। वो धुआं सा क्या होता है? एक मिनट में नजर आता है और एक मिनट में खत्म हो जाता है। खुदावन खुदा कहता है कि हमारी जिंदगी उस उबलते हुए पानी से उठने वाले उस धुएं की मानद है, बुखारात की मानद है, जो एक मिनट में नजर आया और एक मिनट में गायब हो गया। So, यहां पर पालूस रसूल कहता है, यानी ये भेद मुझे मुकाशफा से मालूम हुआ। कौन सा भेद? खुशखबरी का पैगाम कि यीशु मसीह राह और हक और जिंदगी है, यीशु मसीह जिंदगी की रोटी है, यीशु मसीह दुनिया का नूर है, यीशु मसीह निजात का दरवाजा है, यीशु मसीह राह और हक और जिंदगी है, यीशु मसीह क़यामत और जिंदगी है, यीशु मसीह जिंदगी का पानी है, और यीशु मसीह अंगूर का हकीकी दरख्त है। तो पालूस रसूल को ये राज मुकाशफा से मिला, और वो राज क्या था? अंजील की बिशारत, अंजील की खुशखबरी, अंजील की मनादी करना, अंजील के बारे में जाकर दूसरी कौमों को बताना। और यही बात पालूस कहता है, मेरे साथ आज एक हवाला निकाले, इमाल उसका 22वां बाप, 22वें बाप में पालूस रसूल बात करते हुए बताते हुए कि उसकी जिंदगी में जो मुकाशफा यो भेद खुदावन की तरफ से उसे मिला। इमाल 22वां बाप उसकी 17 आयत से हम देख सकते हैं, और यहां पर पालूस रसूल अपनी गवाही देते हुए उन लोगों को कि वो कहां पर पला भड़ा, कहां पर उसकी तरबियत हुई, किस शहर का वो रहने वाला है, अपने बाप दादा के बारे में बताता है, अपने बारे में कहता है कि किस तरह उसने तालीम पाई। और 17वीं आयत कहता है, जब मैं फिर यरूशलम में आकर हैकल में दुआ कर रहा था तो ऐसा हुआ कि मैं बेखुद हो गया और उसको देखा कि मुझसे कहता है जल्दी कर और फौरन यरूशलम से निकल जा, क्योंकि वो मेरे हक में तेरी गवाही कबूल ना करेंगे। पालूस रसूल यहां पर था और खुदावंद यीशु मसीह उस पर जाहिर हुआ और कहा कि तू यहां से निकल जा, क्योंकि वो तुझे कबूल नहीं करेंगे। और 19वीं आयत में लिखा है, मैंने कहा ऐ खुदावंद, वो खुद जानते हैं कि जो तुझ पर ईमान लाए मैं उनको कैद करवाता और जा बजा अबादत खानों में पिटवाता था, और जब तेरे शहीद स्तिफनस का खून बहाया जाता था तो मैं भी वहां खड़ा था, और उसके कत्ल पर राजी था और उसके कातलों के कपड़ों की हिफाजत करता था। उसने मुझसे कहा, जा, मैं तुझे गैर कौमों के पास दूर दूर भेजूंगा। पालूस रसूल वापस जाने की कोशिश करता है यरूशलेम में कि जाके यहूदियों को कलाम सुनाए, तो खुदावंद यीशु मसीह उस पर जाहर होता है और कहता है कि मत जा, वो तुझे कबूल नहीं करेंगे। और फिर पालूस दोबारा खुदा ने यीशु मसीह को जवाब देते हुए कहता है कि मैं वहां पर ही था, वो सब मुझे जानते हैं। जब स्तिफनस को कत्ल किया गया, जब लोगों को मैं पिटवाता था, लोगों से ज्यादती करता था, यीशु मसीह ने उसे कहा कि मैं तुझसे कहता हूं कि जा, मैं तुझे गैर कौमों के पास भेजता हूं, गैर कौमों के पास भेजता हूं। तो पालूस रसूल के लिए खुदावंद यीशु मसीह का ये हुक्म था कि गैर कौमों के पास जा और उनको जाकर मेरे बारे में बता। हम सब की कोई ना कोई खिदमत है, हम सब की कोई ना कोई जिम्मेदारी है इस जमीन पर रहते हुए कि खुदावंद की पैरवी करें, खुदावंद का वो मकसद अपनी जिंदगी में पूरा करें। और खुशी की बात यही है कि अगर हम उस मकसद को पूरा करते हैं, और गम की बात यह है कि जब हम यीशु मसीह के तख्त के सामने खड़े होंगे तो वो हमसे पूछेगा कि तुमने क्या किया, तुमने अपनी सारी हयाती में मेरे लिए क्या किया, तुमने मेरे बारे में बताया ही नहीं। तो हमें अपनी ज़िंदगी में जानने की ज़रूरत है कि हम जिंदा हैं किस लिए, इसलिए कि पढ़ें लिखें, रोटी पानी खाएं, बच्चों का शादी ब्याह करें और फिर नए शौर से फिर उस ही चक्कर को चलाएं जो हमारे बाप दादा ने चलाया और फिर ज़िंदगी ख़त्म, या फिर चाहते हैं कि जब हम इस दुनिया से जाएं कोई भी ना हमारे बारे में बात करे, या फिर चाहते हैं कि जब इस दुनिया से, जिसे कहते हैं कि मर जाएं, फौत हो जाएं, इस दुनिया से रुखसत हो जाएं, तो लोग याद करें कि कोई खुदा का बंदा था, कोई खुदा की बंदी थी, जिसके वसीला से मुझे निजात मिली, जिसके वसीला से मैंने यीशु मसीह को कबूल किया, जिसके वसीला से मैंने यीशु मसीह के बारे में जाना, जिसके वसीला से मैंने यीशु मसीह की मोहब्बत को देखा, जिसके वसीला से मैंने दुआ करना सीखी, जिसके वसीला से मैंने बाइबल पढ़ना सीखी, जिसके वसीला से मैंने और बहुत सी बातें सीखी। हम सब लोगों को सिखाते हैं, लेकिन सवाल ये है कि क्या मसीह की मोहब्बत या दुनिया की नफरत? सवाल ये है कि क्या हम मसीह का प्यार बांटते हैं या फिर नफरत से भरे हुए हसद और बुगज और लड़ाई से भरे हुए बड़े बड़े बोल? हमारी जिंदगी आरजी है, हम इस जमीन पर आरजी हैं, हमारी जो अबदी जिंदगी है जहां पर हम जिंदगी गुजारेंगे, और वहां पर वही जिंदगी गुजारेगा जो नए सिरे से पैदा हुआ है, जिसने यीशु मसीह को कबूल किया है कि उसका निजात दहिंदा है, इकरार किया है, वही। इसलिए सवाल आप सब से है, मेरे अपने आप से है कि क्या मैं दुनिया का रहकर रह जाना चाहता हूँ, या फिर दुनिया में रहते हुए इस आसमानी खुदा के बारे में बताना चाहता हूँ जैसे पालूस ने किया, जैसे पालूस ने किया, और आज उसके वसीला से दुनिया भर में मसीही ईमानदार हैं, दुनिया भर में मसीह का नाम फैला है। और ये फैसला आपको खुद करना होगा, किसी और को नहीं। इसलिए हमें अपने उठने, बैठने, बोलने, चालने और अपनी जिंदगी पर ध्यान करने की जरूरत है कि हम किस तरह चलते हैं, नूर में चल रहे हैं या फिर तारीकी में, हम कैसी मिसाल पेश कर रहे हैं, किसी के लिए बरकत का बायस या फिर लानत का, किस तरह। इसलिए खुदा के कलाम में हमारे लिए ये सच्ची हकीकत जाहर की गई है, लिखी गई है। मेरे साथ निकालें एक हवाला, इस पर हम खत्म करेंगे। अहदनामा में से इम्साल की किताब उसका छठा बाब उसकी छठी आयत से आठवीं आयत तक। इम्साल की किताब उसका छठा बाब उसकी छठी आयत से। इम्साल की किताब हमें सिखाती है कि हम किस तरह अकलमंदी हासिल कर सकते हैं। इम्साल की किताब हमें सिखाती है कि हम अपने बच्चों को किस तरह खुदावन की राह पर ला सकते हैं। इम्साल की किताब हमें सिखाती है कि हम किस तरह खुदा से बातचीत और उसकी हिकमत को हासिल कर सकते हैं। इम्साल की किताब हमें सिखाती है कि हम किस तरह इस जाहल और ना समझ दुनिया में समझदारी के साथ जिंदगी गुजार सकते हैं। तो खुदा का बंदा लिखते हुए कहता है, ए काहिल, चींटी के पास जा, उसकी रफ्शों पर गौर कर और दानिशमंद बन, बावजूद कि उसका ना कोई सरदार ना नाजम ना हाकम है। गर्मी के मौसम में अपनी खुराक मुहैया करती है और फसल के कटने के वक्त अपनी खोरिश जमा करती है। खुदा का बंदा सुलेमान यहाँ पर कहता है, ए काहिल, ए सुस्त, ए लापरवाह लोगो, गौर से सुनो क्या कहता है। चींटी के पास जा। चींटी किसे कहते हैं? छोटी सी कीड़ी, रींगने वाली वो छोटी सी कीड़ी। वो कहता है कि अगर तू अकल दनाई हासिल करना चाहता है तो चींटी के पास जा, उससे सीख वो क्या करती है। क्या लिखा है? उसकी रवशों से, उसके चाल चलन से, उसके चलने से सीख। कभी आपने एक चींटियों को देखा है कि आपके बुवर्ची खाना में आटा खाने के लिए या आपके घरों में कैसे वो कतारें बनाकर आती हैं? देखा ना जी, कैसे तरतीब के साथ, उनमें ना कोई आगे होता है ना पीछे, ना कोई तरतीब तोड़ता है। खुदा का कलाम यही कहता है, उसकी रवशों पर गौर कर और दानिशमंद बन। खुदावन खुदा कीड़ियों से कहता है हमें कि सीखो और अकल हासिल करो। क्यों? क्योंकि वो बड़े तरतीब के साथ, बड़े नब्ज़ो ज़ब्त के साथ, बड़ी तरबियत के साथ चलती हैं। और क्या लिखा है? बावजूद उनका कोई सरदार नहीं, कीड़ियों का कोई सरदार नहीं। जैसे कि शहद की मक्खियों में सरदार, शहद की मक्खियों में शहजादी और शहजादे पाए जाते हैं उनके छत्ते पर। छत्ता वहीं पर लगता है जहां पर कोई मक्खियों की रानी आकर बैठे। लेकिन यहां पर पालू खुदावन का बंदा सुलेमान कहता है कि इन कीड़ियों का ना कोई सरदार है, ना कोई नाजम, ना कोई हाकम। कोई भी उनको चिल्लाने वाला नहीं, कोई भी उनका हाकम या दुरुस्त करने वाला नहीं, तो भी वो तरतीब के साथ, तो भी वो फिक्र रखते हुए क्या करती हैं? गर्मी में, गर्मियों में कीड़ियां निकलती हैं ना जी, गर्मियों में आती हैं आपके घरों से, वो चावल दाल आटा जो कुछ भी हो उन्होंने सारा साल इकट्ठा, 6 महीने इकट्ठा करना है। क्यों? ताकि जब सर्दी आए तो वो सर्दी में अपने घर में रहकर, उन छोटे छोटे सराखों में रहकर, खुदों में जिसे कहते हैं, खा सकें। इस बात में बहुत सी गहरी बातें हैं लेकिन सादा हैं। हमें कीड़ियों से सीखने की जरूरत है। वो अपना बचाव करने के लिए पहले से तैयारी करते हैं। क्या हम अपने आप को तैयार कर रहे हैं या नहीं? फसल कटने के वक्त अपनी खुराक जमा करती हैं। और 9वीं आयत में उन लोगों के लिए है जो काम करना पसंद नहीं करते, जो बिस्तर से उठना पसंद नहीं करते, उनको खुदा का कलाम बड़े हथौड़े की मलामत के साथ कहता है, तू कब तक, तू नींद से कब तक उठेगा? थोड़ी सी नींद, एक और झपकी, जरा पड़े रहना हाथ पर हाथ। इसी तरह जो लोग नहीं उठना चाहते, ओ मैनू नींद आई, आओ फलां टमकां, बहुत से जतन, बहुत से ड्रामे। खुदा का कलाम कहता है कि कीड़ियों से सीखो, वक्त ख़त्म हो चुका है, हम अगले दिन में फिर इस पर गौर करेंगे और तफसील के साथ और सीखेंगे। आहम खुदा के हुजूर झुकें।